मैं तो अपनी बीवी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का क्या होगा? नहीं नहीं प्लीज नानी माँ, कुछ तो करो। अब जैसे ही आहन ने एक बार फिर इस तरह की बातें करना शुरू की, सभी ने अपने अपने सिर पर हाथ मार लिया। वहीं ध्रुव और आकाश तुरंत वहां से निकलकर अरमान के पास जाने लगे, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में देख लिया था कि अरमान को इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है, और अरमान अपने गुस्से में क्या से क्या कर सकता है, ये बात वे अच्छी तरह से जानते थे। तो इसीलिए वे अब सीधा अरमान के कमरे की ओर जाने लगे। वहीं वसुंधरा, जो इस वक्त किचन में मौजूद थी, पूरी तरह से अंदर ही अंदर तप रही थी, क्योंकि जब से नानी माँ ने सबको खाने से रोका और खाने को टेस्ट करने को बोला, तो वो समझ चुकी थी कि नानी माँ क्या कहने की कोशिश कर रही है। पर इस वक्त उसकी सहन की कोई सीमा नहीं थी, और वो बोली थी, मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं है, बल्कि सब पर शासन करने का है। भला मैं इस तरह से अपने फ्यूचर नौकरों को कैसे मार सकती हूँ? कहीं ना कहीं वसुंधरा अपने ही ख्याली पुलाव बनाते हुए अपने ही मन की अलग दुनिया में पहुंच गई थी। वहीं दूसरी ओर आस्था बेचैनी से इधर उधर अपने कमरे में टहल रही थी, क्योंकि उसकी अरमान से बात नहीं हो पा रहा था, और इस बात से वो थोड़ी दुखी थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उसके दादाजी दिग्विजय रघुवंशी इंडिया जाने के नाम पर रिएक्ट कर रहे थे, और आस्था के सवाल पर उन्होंने अजीब सा जवाब दिया था, ये बात आस्था समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार दादाजी ऐसी कौन सी बात छुपा रहे हैं। इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। कहीं ना कहीं वो दादाजी से जानना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत को लेकर थोड़ा डर भी रही थी कि अगर आस्था उनसे कुछ पूछ ले तो कहीं एक बार फिर उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन आस्था को अब वापस घर जाने का समय आ रहा था, और घर जाने से पहले वो अपने दादाजी की सारी प्रॉब्लम दूर करना चाहती थी। कुछ देर आस्था अपने कमरे में इधर उधर टहलती रही, तभी अचानक उसे अंश के रोने की आवाज सुनाई दी। आस्था दौड़कर उसके पास गई। उसने देखा अंश अविनाश के गोद में है, और अविनाश उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तब आस्था मुस्कुराई और अविनाश के पास जाकर बोली, अरे भैया, ये आपसे बिल्कुल भी चुप नहीं होने वाला। ऐसे कीजिए, इसे मुझे दीजिए, मैं अभी इसके डेविल डैडी के बारे में बातें करूंगी ना, तो ये तुरंत चुप हो जाएगा। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अविनाश मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन गोरी, मुझे नहीं लगता तुझे इतनी खतरनाक बातें छोटे बच्चों से करनी चाहिए। अगर तू अभी से इसके साथ इसके पिता के कारनामों के बारे में बातें करेगी तो कहीं ये अभी से ही निडर ना हो जाए, और थोड़ा सा डर हर किसी के अंदर जरूर होना चाहिए। तब आस्था ने सम्मान के साथ जवाब दिया, भैया आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे इसे किस तरह का बनाना है, और आप तो जानते ही हैं, मैं तो चाहती हूँ कि ये बिल्कुल अपने पिता के जैसा बने, एकदम बहादुर और दूसरों की मदद करने वाला। आस्था के मुंह से निकली हुई बातें उस वक्त कोई और भी सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे, जो थोड़ी देर आराम करने के बाद व्हीलचेयर पर बैठकर वहां आ रहे थे। अविनाश और आस्था की बातें सुन चुके थे, खासकर आस्था के मुंह से निकली हुई ये बात, किस तरह साहसी बनना चाहिए, उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर गई थी। वो इस वक्त काफी ज्यादा उदास और कुछ परेशान से थे। अविनाश और आस्था की बातें सुन चुके दिग्विजय जी, खासकर आस्था के मुंह से निकली हुई ये बात, किस तरह साहसी बनना चाहिए, उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर गई थी। वो इस वक्त काफी ज्यादा उदास और कुछ परेशान से थे, लेकिन उनकी परेशानी क्या थी ये बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा था। फिलहाल अविनाश की नज़र जल्दी ही अपने दादाजी पर पड़ी, और वो तुरंत बोले, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त आराम की जरूरत है, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था, प्लीज आप अपने कमरे में चलिए, आपको आराम करना चाहिए। तभी दादाजी ने नम आंखों से आस्था को देखते हुए कहा, बेटा मैं तो आराम कर लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी गोरी बेटियां कुछ ही दिनों में वापस जाने वाली हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताना चाहता हूँ, मैं अपना वक्त बेकार नहीं गंवाना चाहता, और फिर ये नन्हा सा मेहमान भी तो है, तुम जानते हो जब से ये आया है ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेरी बीमारियां तो इसे देखते ही खत्म हो गई हैं। दिग्विजय सिंह जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जिसे कहीं ना कहीं अविनाश और आस्था दोनों ने देख लिया था। उसी समय एंजल की आवाज आई, आप सबके लिए खाना रेडी है। कहीं ना कहीं एंजल अंदर ही अंदर थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उसने अभी तक आस्था पर हुए अटैक की बात नहीं बताई थी। आस्था ने उन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाया था, और साथ ही एंजल से वादा लिया था कि वो अविनाश या उनके दादाजी को किसी भी तरह की बात नहीं बताएगी। आस्था नहीं चाहती थी कि वो कुछ दिनों के लिए आई है तो बेकार में वो सबको परेशान ना करे। फिर आस्था मुस्कुराते हुए दादाजी से बोली, दादाजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम जानते हैं कि हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन हमने डिसीजन लिया है कि अब हम पहले अविनाश भैया को राखी बांधेंगे, उसके बाद जाएंगे, आखिरकार हमारे और भैया भी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आस्था का सीधा इशारा आकाश, सुमित और टाइगर से था। आस्था उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, उन्हें भी राखी बांधना चाहती थी,
क्योंकि नानी माँ ने कॉल पर पहले ही बता दिया था कि इतने दिनों बाद उसे अविनाश मिला है और अभी तक उसने उसे राखी तक एक बार भी नहीं बांधी है। इसलिए इस बार उसने ठान लिया था कि सबसे पहले अविनाश को ही राखी बांधेगी। ये सुनकर अविनाश पूरी तरह खुश हो गया। उसने आस्था को गले लगाकर कहा, मेरी प्यारी बहन, सचमुच मेरी कलाई तो बरसों से सुनी है। जानती हो, हर रक्षाबंधन पर मैं एक राखी मंगवाकर हमेशा अपने पास रखता था और कल तुम मुझे सारी राखियां बांधोगी, अविनाश ने नम आंखों से कहा। ये सुनकर आस्था मुस्कुरा दी। तभी अचानक नौकर एक बड़ा सा ब्रीफकेस लेकर वहां आया। उसमें सचमुच पिछले 15 सालों से अविनाश की संभाल कर रखी हुई सारी राखियां पड़ी हुई थीं। उन राखियों को देखकर आस्था की आंखें पूरी तरह नम हो उठीं। वहीं दिग्विजय सिंह जी का मन और भी भारी हो गया था। उन्हें लग रहा था कि इस पूरे बिखरे हुए परिवार का कारण कहीं ना कहीं वही है। अगर उन्होंने वो सब गलतियां ना की होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। उनका हंसता खेलता परिवार इस तरह बर्बाद ना हुआ होता। कहीं ना कहीं आस्था अपनी चोर नजरों से बार बार अपने दादाजी को देख रही थी। वो उनके इमोशंस नोटिस कर रही थी कि वो कब क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, मगर आस्था सीधे सीधे उनसे ये पूछ नहीं पा रही थी कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल उसने दादाजी का हाथ थाम कर कहा, दादाजी आप जानते हैं मेरे पास एक ऐसा पति है जिसने मुझे इजाजत दी है कि मैं इस दुनिया में निडर होकर जी सकूं। वो मुझ पर कभी आंच तक नहीं आने देगा। उसने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं आसानी से किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। आपने बहुत सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं शायद इस दुनिया की पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी और ताकत के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति मिस्टर अरमान सिंघानिया का हाथ है, और मैं गर्व करती हूँ इस बात पर। आस्था की इन बातों ने जैसे दादाजी के दिल को छू लिया। उनकी आंखें अचानक ही नम हो गईं और वो खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रो दिए थे। अब दादाजी को इस तरह से रोते हुए देखकर अविनाश, एंजल साथ ही साथ आस्था के हाथ पांव फूल गए और वो उन्हें शांत करने की पूरी पूरी कोशिश करने लगे थे कि अचानक से दादाजी को क्या हो गया, इस तरह से क्यों रो रहे हैं। तभी आस्था दादाजी को रोता देखकर तड़प कर बोली,
दादाजी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज इस तरह से रोकर मुझे पाप की भागीदारी मत बनाइए। प्लीज बताइए ना मुझसे मेरी क्या गलती हुई है, आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग गई जिसके कारण आप इस तरह से रो रहे हैं। तभी अचानक आस्था ने देखा कि कुछ देर तक रोने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे दिग्विजय सिंह जी अपने बरसों से दिल पर पड़े बोझ को उतार रहे हों। काफी देर तक रोने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और फिर उन्होंने आस्था की ओर देखा और कहा, गोरी तुमने मुझसे कितनी ही बार पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ी भरा कार्य कर बैठा और इस तरह का लॉकेट बनवा बैठा जो मेरे ही परिवार की मौत का कारण बन गया। बेटा मैं आज तुम्हें वो सच ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बात कभी भी सारी बात जानकर अपने दादाजी से नफ़रत नहीं करोगी। तब आस्था ने धीरे से दादाजी का हाथ थामा और बोली, शांत हो जाइए दादाजी, और मैं आपकी पोती ही नहीं बल्कि आपकी मित्र भी बनना चाहती हूँ। और फिर वो गहरी सांस लेकर साहस से बोली, दादाजी ये तो मुझे समझ आ गया कि राजवीर की नफ़रत और उसकी पत्नी की मौत इन लॉकेट्स की वजह से हुई, लेकिन आप बताइए आखिर आपने अपनी सारी धन संपत्ति क्यों दाव पर लगा दी थी? आप तो नॉर्मल भी रह सकते थे, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता सकते थे। दादाजी ने कुछ पल चुप रहकर आंखें बंद की, फिर भारी आवाज में बोले, हाँ बेटा, और यही सबसे बड़ी बात है। राजवीर की पत्नी को भी उन लॉकेट्स में से एक बेहद पसंद आया था, लेकिन तब तक सारे बिक चुके थे। उसकी जिद, उसका गुस्सा और फिर उसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। राजवीर ने अपनी पत्नी के मरने के बाद पागलपन में कसम खाई कि जिनके गले में मेरे लॉकेट होंगे वो जिंदा नहीं बचेंगे, इसीलिए उसने निर्दोष लोगों की जान ली और लॉकेट्स छीन लिया। असल में मैं हमेशा से चाहता था कि लोग मुझे सिर्फ जमींदार दिग्विजय सिंह या धनवान आदमी के नाम से ना जाने। मैं चाहता था कि मेरी पहचान मेरे काम से हो। मैंने जवानी से ही सपना देखा था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसे लोग सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि कला का शिखर माने। इसलिए मैंने दुनिया भर से कीमती पत्थर मंगवाए, कारीगरों को सालों तक काम पर लगाया और अपनी पूरी संपत्ति इन लॉकेट्स को बनाने में झोंक दी। हर लॉकेट अनोखा था, नायाब कारीगरी, महीन नक्काशी और कीमती रत्नों से चढ़ा हुआ। लोग कहते थे कि मैं अपनी अक्ल खो बैठा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये लॉकेट्स मेरी जिंदगी का सपना थे। आस्था ध्यान से सुन रही थी। दादाजी की आंखें ये सब बताते हुए पूरी तरह से चमक रही थीं। तब आस्था ने नम आंखों से कहा, दादाजी आपको उस लॉकेट को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अब आस्था का ये सवाल सुनकर दादाजी पूरी तरह से चौंक गए थे और जल्दी ही कुछ अनचाहे से विजुअल उनकी आंखों के सामने आने लगे। तब दादाजी ने गहरी सांस लेकर बेहद सादगी से कहा, उसका नाम था श्री। बेहद सादगी भरी लेकिन दिल से बड़ी ख्वाहिश रखने वाली लड़की थी। वो हमेशा कहा करती थी, दिग्विजय अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करना। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा एक अनोखा गहना बनाओ जिसे देखकर दुनिया तुम्हारा नाम ले और जिसे पहनने वाला हमेशा याद रखे कि ये मोहब्बत का निशान है। दादाजी उस वक्त बहुत गरीब थे, लेकिन श्री की ये बात उनके दिल में पत्थर पर लकीर की तरह अंकित हो गई। लेकिन किस्मत ने क्रूर खेल खेला। दादाजी की शादी किसी और से हो गई और श्री किसी हादसे में उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई। उस दिन के बाद से दादाजी के दिल में एक कसक हमेशा जिंदा रही। उन्होंने खुद से वादा किया था कि अगर श्री मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती तो कम से कम उसका सपना मैं पूरा करूंगा। यहीं से शुरू हुआ दादाजी का जुनून। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, जमीन जायदाद, कारोबार तक बेच डाला और सिर्फ एक ही काम को अपना मकसद बना लिया, लॉकेट बनाना। हर लॉकेट में उन्होंने वही डिजाइन डाला था श्री ने अपने मुंह से डिस्क्राइब किया था और कहा था, याद रखना, यही मेरे सपनों का गहना होगा। सालों तक दादाजी दिन रात मेहनत करते रहे और जब वो लॉकेट तैयार हुए तो उन्होंने उसे बेचा ताकि दुनिया उसे पहने और जाने कि यही वो मोहब्बत का लॉकेट है जिसके पीछे एक अधूरी कहानी छिपी है। लेकिन एक लॉकेट उन्होंने कभी बेचा ही नहीं। वो लॉकेट उन्होंने अपनी पोती आस्था के लिए बचा कर रखा, क्योंकि दादाजी की नज़र में आस्था वही मासूमियत, वही सादगी और वही हिम्मत थी जो उन्हें कभी श्री में दिखती थी। उनका अधूरा सपना ये था कि अगर जिंदगी ने मुझे वक्त दिया तो मैं ये आखिरी लॉकेट श्री को अपने हाथों से जरूर पहनाऊंगा, और अगर नहीं तो मेरी आस्था इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। यही वजह थी कि दादाजी ने सब कुछ दांव पर लगाकर ये लॉकेट बनाए। उनके लिए ये सिर्फ कहना नहीं था, ये उनकी बचपन की मोहब्बत श्री का अधूरा सपना और उनकी आत्मा का सबसे बड़ा जुनून था। दादाजी आज अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद कहीं ना कहीं बेहद शांत नजर आ रहे थे। एंजल, अविनाश और साथ ही आस्था तीनों ही दादाजी की बातें सांसें थामकर सुन रहे थे। दादाजी ने जब ये राज खोला कि इनकी जिंदगी में कभी एक मोहब्बत थी और सिर्फ उसी मोहब्बत की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था तो सभी हैरान रह गए। हालांकि वो मोहब्बत उनसे जुदा हो चुकी थी लेकिन उसकी यादें अब भी दादाजी के दिल में गहराई तक बसी हुई थी। ये सुनकर सबके दिमाग सवालों से भर गए। आस्था ने गहरी सांस ली और तुरंत दादाजी से कहा,